और तल्बिया सबसे बेहतर तल्बिया का होना सुन्नत है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से एहराम के वक्त नियत के साथ साथ तल्बिया पढ़ना नहीं दिया गया। यहाँ हमारे सहायक नाम ने बिल्कुल नहीं अंदाज तैयार किया जो नमाज के अंदर है, यानी जैसे नमाज के दाखिले के लिए नियत के साथ साथ तकबीर तहरीमा कही जाती है या कोई ऐसा लफ्ज कहा जाए जाना जरूरी है जो काबिल खालिस है जिसकी मदद पर दलाल करता, और एहराम फेल ये है कि नियत के साथ साथ कोई ऐसा फेल पाया जाए जो हज के साथ साथ जैसे सब होती या तकलीद खुद उसके बाद सिर्फ कबाया ना का बयान इसके अंदर मुख्तलिफ है कि तहकुते एहराम के लिए ये दोनों चीजें यानी नियत और इसी तरह से नियत और फेल अरकान है या शराय साहिब बाहर ने भी इनको अरकान समझा है, लेकिन साहब न किराय है कि उसके हमने शराय नहीं। फिर उसके बाद एहराम फराइज हज में से है, इसमें किसी का भी इख्तलाफ नहीं। अब उसके बाद जो ये समझो तीन इंदल एहराम का मुसन्निफ़ तर्जुमा मुनज्जिम किया, इससे हजरत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या बतलाना चाहते हैं। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि इमाम बुखारी ने तर्जुमे से इस बात पर तर्जुमा की है कि खलूक के होने का कसूर वो सियाक से मुताल्लिक है, बदले महरिम से मुताल्लिक नहीं है। लिहाजा अगर मुहरिम कोई ऐसी इस्तेमाल कर लिए बदन पर जो एहराम के बाद बाकी रहे इसकी कोई मुदायफा नहीं है। और इस मसले के अंदर इब्ने रबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इत्तेफाक मुहरिम को एहराम से पहले लगाना चाहे बल्कि उलमा फरमाते हैं मंजूर, अलबत्ता इसमें इख्तलाफ है अलमा लगा सकते हैं या वो उसे लगाई जा सकती है बात बाकी है। इमाम मालिक और मोहम्मद बिन हसन फरमाते हैं सिर्फ वैसी खुशबू लगाई जा सकती है जिसका असर बाद में बाकी है, और ऐसी खुशबू जिसका असर एहराम के बाद बाकी रहे लगाने जायज नहीं है। उलमा फरमाते हैं कि हर तरफ खुशबू लगानी जायज है। फिर उसके बाद जमहूर उलमा ने इस मसले के अंदर इख्तलाफ कि आयत और वो बदन दोनों का हुक्म एक है या दोनों के अंदर कोई फर्क है। राते हनाबिला फरमाते हैं और बदन दोनों एक है, राते शाफिया बदन के अंदर कोई किसी के पायल है, लेकिन सौ में उनकी दो रिवायतें हैं, एक जवाब की दूसरे आदमी जवाब जवाब की वाली रिवायत मुझे वहाँ पता है। हजरत हनफी रहमतुल्लाह कह रहे हैं बदन में तो जमहूर के साथ हैं, लेकिन सौ के अंदर उनकी दो रिवायतें हैं, एक जवाब की दूसरी अदन ने जवाब की, ये दोनों रिवायतें अलामा सबीली हैं शरीफ हिजाब के अंदर मुतबनी। आम तौर से मुतून के देखने से मालूम होता है कि हमारे यहाँ बदन में खुशी लगाने में सौ में खुशी लगाने में कोई मुलायफा नहीं है, और अलामा कबूती ने सहरी और मां रहमतुल्लाह अलैहिमा ने अदन जवाब और इख्तियार किया, और मशहूर यही है का कितना उसको तो सौ के अंदर जायज कहते हैं और बदन में जायज कहते हैं और सौ में नाजायज कहते हैं। तो अब मसले के अंदर तीन और हो गए, मालिक मोहम्मद का मसलक के लिए निकला के किसी लौकी खुशबू नहीं चाहिए, यानी ऐसी खुशबू जो इहराम के बाद बाकी हनाबिला और शाफिया फरमाते हैं मुतलकन सौ वो बदन में ऐसी खुशबू लगाई जा सकती है जो इहराम के बाद बाकी है। हनफिया फरमाते हैं बदन के अंदर जायज और सौ के अंदर जायज नहीं है। حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے میں حنفیہ ہی کے ہم خیال میں، اسی لیے پہلے تو امام نے بصر خلو کے تراث مرات میں سیاق کا ترجمہ نقل کیا اور اس کے بعد باب کی اندر احرام کا ترجمہ منعقد فرمایا، گویا یہ بدلاؤ سے ہیں کہ کپڑے میں تو کسی گنجائش ہے نہیں، البتہ جو ہے بدن کے اندر خوشبو لگا سکتے ہیں۔ اب یہ خوشبو لگانا کیسا علم کرایہ احرام سے پہلے خوشبو لگانا مستحبات اور مسنونات میں سے ہے، واللہ تعالی اعلم۔ وما یلبس اذا اراد ان یحرم، اور مخرج کیا پہنے جب احرام کا ارادہ کرے، ویتوجل ویدہن، اور کندھا کرے اور تیل لگائے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجیح و اتحان دو چیزوں کا ترجمہ میں سے کیا، لیکن روایت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں، روایت میں صرف خوشبو لگانے کا ذکر ہے۔ مصنف رحمہ نے اتحان ترجیح کو تین ہی سے ثابت کیا، اس لیے کہ ان کا تینوں طرفوں کے اندر مشترک ہیں۔ اس کا بھی مقصود ذرا کچھ راحت و آرام ہے اور ان دونوں کا مقصود بھی یہی ہے۔ وقال ابن عباس یشم المحرم الرحان، محرم خوشبو چوم سکتا ہے یا نہیں اس کے اندر علماء کے تین قول ہیں۔ آپ ابن راہوے تو فرماتے ہیں مباح ہے، امام احمد سے توقف من قول ہے، ویسے حنابلہ کے ہم دو قول میں عبارت اور تقین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دین کے قائل، مالک اور حنفیہ فرماتے ہیں مکروہ ہے، تو تین قول ہو گئے۔ اور باقی امام مالک شافعی و بعض حنابلہ کراہت، امام مالک مالک بعض حنیفہ عبارت، امام مالک اسحاق وجماعت من الحنابلہ، وینظر فی المرآۃ ویتداوى، اور آئینہ بھی دیکھ سکتا۔ ائمہ اربعہ کے یہاں محرم کو آئینہ دیکھنا جائز ہے، لیکن امام شافعی سے منسوب ہے کہ منسوب ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں